नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सामसमा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में नवगठित अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन की पहली सांसद बोर्ड की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार की साइबर अपराध से निपटने के लिए सरकार के अगले 5 साल में 5,000 साइबर कमांडो को प्रशिक्षित करने की योजना। साइबर सुरक्षा के सभी हितधारकों से इस खतरे से निपटने के लिए एक साथ आने का आह्वान। उत्तराखंड के सोनप्रयाग के पास केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बारिश के कारण हुए भूस्खलन में 5 तीर्थयात्रियों की मृत्यु। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की घोषणा की। भारत ने कहा, सुरक्षा परिषद में राजनीतिक भेदभाव से संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान प्रभावित हो रहे हैं। अस्थायी सदस्यता को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने का आह्वान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में नवगठित अनुसंधान राष्ट्रीय रिसर्च फाउंडेशन ANRF की पहली सांसद बोर्ड की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं। इस फाउंडेशन की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा पर की गई थी। इसका उद्देश्य देश के विश्वविद्यालय, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों और अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना है। अनुसंधान राष्ट्रीय रिसर्च फाउंडेशन देश में वैज्ञानिक अनुसंधान को उच्च स्तरीय कार्यनीति दिशा प्रदान करने वाले एक शीर्ष निकाय के रूप में काम करता है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अभिन्न हिस्सा बताया है। श्री शाह ने नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C के पहले स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि देश की प्रगति साइबर सुरक्षा के बगैर संभव नहीं है। श्री शाह ने सभी हितधारकों से इस खतरे से निपटने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। विभिन्न क्षेत्रों में इंटरनेट के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि डिजिटल लेनदेन और डिजिटल आंकड़ों का इस्तेमाल देश में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इस कारण साइबर सुरक्षा से जुड़े लोगों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। श्री शाह ने कहा कि हाल ही में प्रभावी 3 आपराधिक कानूनों में देश में साइबर अपराध से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान है। संदिग्ध पंजीकरण की I4C पहल को लेकर श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर का साइबर संदिग्ध पंजीकरण भविष्य में अपराधों को रोकने में सहायक होगा। उन्होंने बताया कि I4C साइबर सुरक्षा पर राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान का शुभारंभ करने जा रहा है। उन्होंने सभी राज्य सरकारों से इस अभियान में शामिल होने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का आयोजन शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर विषय पर किया जा रहा है। 3 दिन के सम्मेलन में भारत की सेमीकंडक्टर नीति पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य देश के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में बढ़ावा देना और भारत को इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण वैश्विक प्रतिस्पर्धा के रूप में स्थापित करना है। विदेश मंत्री एस सुब्रमण्यम जयशंकर आज से जर्मनी के 2 दिन के यात्रा पर रहेंगे। बर्लिन में अपने प्रवास के दौरान डॉ. जयशंकर जर्मनी के विदेश मंत्री और अन्य प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों के समूचे परिदृश्य की समीक्षा करना और सहयोग के नए अवसरों की तलाश करना है। 3 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में डॉ. जयशंकर 12 से 13 सितंबर तक जिनेवा में रहेंगे। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज राज्यसभा के 2 नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। श्री धनखड़ ने आज संसद भवन में मिशन रंजन दास और राजीव भट्टाचार्य को शपथ दिलाई। उत्तर प्रदेश में केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुद्रप्रयाग जिले में सोनप्रयाग के पास मूसलाधार बारिश से कल हुए भूस्खलन में 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल तथा पुलिस ने संयुक्त रूप से राहत और बचाव अभियान चलाया। 3 घायलों को बचाया गया है। मृतकों में 3 मध्य प्रदेश से, 1 गुजरात से तथा 1 नेपाल से है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 90 सीटों के लिए करीब 135 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे हैं। नामांकन प्रक्रिया 12 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक चलेगा। भारतीय जनता पार्टी अब तक 67 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुका है। वहीं कांग्रेस ने भी 41 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। आम आदमी पार्टी ने 29, जन नायक जनता पार्टी, आजाद समाज पार्टी गठबंधन ने 31 और इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन ने 12 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। मुख्यमंत्री नायब सैनी आज लाडवा में नामांकन दाखिल करेंगे। आम आदमी पार्टी ने आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। पार्टी ने प्रवेश मेहता को फरीदाबाद विधानसभा सीट से टिकट दिया है, जबकि मुख्तियार सिंह बाजीगर को रतिया विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी ने कल 20 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 19 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। इसमें 6 पूर्व मंत्रियों के नाम भी शामिल है। डॉ मनोहर लाल सिंह को बिलवार, चौधरी लाल सिंह को बसोहली, रमन भल्ला को आरएसपुरा जम्मू दक्षिण, योगेश साहनी को जम्मू पूर्व, यशपाल कुंडल को रामगढ़ और मुलाराम को माड़ सीट से टिकट दिया गया है। दूसरे चरण के लिए 6 जिलों की 26 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन पत्र वापस लेने का कल अंतिम दिन था। जम्मू कश्मीर में यह मतदान 25 सितंबर को होगा। नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स में आज तंबाकू निवारण क्लिनिक टीसीसी का उद्घाटन किया गया। टीसीसी राष्ट्रीय औषधि व्यसन उपचार केंद्र एनडीडीटीसी और फेलमोरी क्रिटिकल केयर और स्लीप मेडिकल विभाग के सहयोग से यह क्लिनिक शुरू किया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य तंबाकू की लत से पीड़ित व्यक्तियों को इससे छुटकारा दिलाने में मदद करना है। इस क्लिनिक का उद्घाटन करते हुए एम्स दिल्ली के निदेशक डॉ एम श्रीनिवास ने कहा कि टीसीसी तंबाकू मुक्त एम्स पहल के हिस्से के रूप में स्वस्थ वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल को लेकर आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फेलमोनरी क्रिटिकल केयर और स्लिप मेडिसिन विभाग के प्रमुख तथा प्रोफेसर डॉक्टर अनंत मोहन ने कहा कि इस पहल के जरिए तंबाकू सेवन के दुष्प्रभाव से मरीजों को अवगत कराया जाएगा और तंबाकू से छुटकारा दिलाने में मदद की जाएगी। नागालैंड के उप मुख्यमंत्री वाई पैटन ने कहा है कि राज्य में अवैध प्रवासियों की घुसपैठ के मुद्दे पर राज्य सरकार हाई अलर्ट पर है तथा इस तरह की किसी भी गतिविधि को रोकने के लिए सरकार सभी जरूरी कदम उठाएगी। अवैध प्रवासी पर एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, पुलिस और अन्य राज्य तथा केंद्रीय एजेंसियां अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। महाराष्ट्र में 10 दिन का गणेश उत्सव भक्तिभाव, उत्साह और धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने लोगों में एकता की भावना निर्माण करने और देश में स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने के उद्देश्य से इस उत्सव का शुरुआत किया था। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के हजारों गांवों ने एक गांव एक गणपति उपकरण में हिस्सा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता को विशेषकर अफ्रीका की भागीदारी से अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने का आह्वान किया है। भारत ने उल्लेख किया है कि सुरक्षा परिषद में राजनीतिक मतभेद शांति अभियानों को प्रभावित कर रहा है। कल सुरक्षा परिषद में अपने पहला संबोधन देते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के नव नियुक्त अस्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद में राजनीतिक तालमेल की कमी है, इस कारण संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वियतनाम के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि प्रचंड तूफान यागी और बाढ़ तथा भूस्खलन के कारण आज सुबह देश के उत्तरी क्षेत्र में मरने वालों की संख्या बढ़कर 65 हो गई है, जबकि 39 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।